بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں۔ شروتاؤں، آج آپ قرآن مجید کے سورہ فتح کی 28ویں اور 29ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں عبدالعزیز حسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، وہی وہ ایشور ہے جس نے اپنے پیغمبر کو مارگ درشن اور ستیہ دھرم کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سبھی دھرموں پر پربھتو پردان کرے، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی پریاپت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے اتیانت کڑے اور آپس میں اتیانت دیالو ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ ایشور کے سمکش جھکے ہوئے اور نتمستک ہو کر اپنے پالنہار سے انوگرہ اور دیا و کرپا کے اچھک ہیں۔ اتیادھک سجدوں کے کارن ان کے چہروں پر سجدوں کے چن ہیں۔ ان کی یہی وشیشتا توریت میں ہے اور ان کی یہی وشیشتا انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے اپنا انکر نکالے، پھر اسے سشکت بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جائے، کہ جو کھیتی کرنے والوں کو بھانے لگے تاکہ ان کے مادھیم سے کافروں کو جلایا جائے، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کرم کرتے رہے ان سے اللہ نے کشما اور مہان پرتیفل کا وعدہ کیا ہے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہمارے پرسارن کو آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ دوستوں، آج رویوار ہے، خرداد ماہ کی 29، ذیقعدہ کی 19 اور جون کی 19 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ رکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اوپرانت کاریکرم انمول باتیں پرستت کیا جائے گا۔ انمول باتیں کے بعد آپ سنیں گے راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم، اس کے اوپرانت ہم آپ کو سنائیں گے کاریکرم قرآن ایشوری چمتکار، اور سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا آج کل۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ رکھا، اور ابھی آپ کچھ شلوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ قزاقستان کے راشٹرپتی ایران کے دورے پر، کئی اہم سمجھوتوں پر ہستاکشر۔ ایران اور یو اے ای نے سمبندھوں کے وستار پر بل دیا۔ اسرائیلی سینکوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی شہید۔ کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ میں آئی تیزی۔
ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے قزاقستان کے اپنے سمکش کا تہران استھت ایتیہاسک سانسکرتک پریسر ساد آباد میں اوپچارک روپ سے سواگت کیا۔ یہاں تک کہ قزاقستان کے راشٹرپتی قاسم زومارت توکایوف ایک دیوسیہ دورے پر رویوار کو تہران پہنچے، جہاں میں ایران کے اچھ ادھیکاریوں کے ساتھ مہتوپورن دوپکشی و شیتریہ مدوں پر وچار ومرش کر رہے ہیں۔ ایران کے راشٹرپتی کے ادھیکاری ویب سائٹ کے انوسار، ایرانی راشٹرپتی نے قزاقستان کے اپنے سمکش کا رویوار کو ساد آباد سانسکرتک پرسر میں بھوے سواگت کیا۔
اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی اور قزاقستان کے راشٹرپتی قاسم زومارت توکایف کی موجودگی میں ان سمجھوتوں پر ہستاکشر ہوئے ہیں۔ دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی پتروں پر ہستاکشر کے کاریکرم کے آرمبھ میں دونوں دیشوں کے کشما کیجیے گا اسلامی گنتنتر ایران اور قزاقستان کے راشٹرادھیکشوں کی اپستھتی میں دونوں دیشوں کے بیچ نو سہمتی پتروں اور سہیوگ کے دستاویزوں پر ہستاکشر ہوئے۔ اسلامی گنتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی اور قزاقستان کے راشٹرپتی قاسم زومارت توکایف کی موجودگی میں ان سمجھوتوں پر ہستاکشر ہوئے۔ دونوں دیشوں کے بیچ سہمتی پتروں پر ہستاکشر کے کاریکرم کے آرمبھ میں دونوں دیشوں کے راشٹرادھیکشوں نے سنیکت بیان پر بھی ہستاکشر کیے۔ سنیکت بیان پر ہستاکشر کے بعد دونوں دیشوں کے راشٹرپتی رویوار کی شام سنیکت پریس کانفرنس میں بھاگ لیں گے۔ اس سے پہلے دونوں دیشوں کے راشٹرپتیوں نے اپنی دوپکشی بیٹھک میں دوپکشی اور مہتوپورن شیتریہ و انتراشٹریہ مدوں پر وچار ومرش کیا تھا۔
ایران کے ودیش منتری نے اپنے اماراتی سمکش کے ساتھ ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت میں کہا کہ شیتر میں اسرائیل کی اپستھتی سے اشانتی اور ودھوانسکاری کاروائیوں کو بڑھاوا ملے گا۔ رویوار کو یو اے ای کی ودیش منتری شیخ عبداللہ بن زائد کے ساتھ بات چیت میں ایرانی ودیش منتری हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर बल देते हुए कहा कि किसी को भी क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेहरान की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्राप्त है, इसलिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ना चाहिए ताकि द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार के लिए भूमि प्रशस्त हो सके। शेख जायद ने भी दोनों देशों के संयुक्त हितों की ओर संकेत करते हुए ईरानी और इमाराती अधिकारियों के बीच निरंतर विचार विमर्श के प्रस्ताव का स्वागत किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता ने कहा है कि ईरानी गैस पाइप लाइन योजना से पाकिस्तान के ऊर्जा संकट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पीपीपी के नेता नदीम अफसल चंद ने कहा कि ईरान के साथ संबंधों का विस्तार पाकिस्तान के हित में है। नदीम अफसल चंद ने पाकिस्तान और ईरान के बीच व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग पर भी बल दिया। पीपल्स पार्टी के नेता ने ईरानी पाकिस्तान गैस पाइप लाइन योजना को शीघ्र अंतिम रूप देने की मांग की है। ज्ञात रहे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान का 2 दिवसीय दौरा किया था और अपने इस दौरे में राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंटवार्ता के बाद मशहद में इमाम रजा अलैहि सलाम के रोजे की जियारत भी की थी।
ज़ायन शासन के सैन्य रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में इसराइली सेना की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। फिलिस्तीन के सूचना प्रसारण केंद्र ने इसराइली सेना के रेडियो के हवाले से रिपोर्ट दी है कि शनिवार की शाम एक फिलिस्तीनी नागरिक बैत एल शहर में स्थित इसराइली सेना के एक अड्डे में घुस गया और काफी देर तक वहीं रहा। इसराइली सेना के रेडियो का कहना है कि इस फिलिस्तीनी ने सुरक्षा बाड़ को पार किया और सीमावर्ती सैन्य अड्डे में घुस गया। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद एक इसराइली सैनिक ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले भी रामल्ला के निकट इसराइली सैन्य अड्डे में एक व्यक्ति घुस गया था। इसराइली सेना की सुरक्षा में सेंध ऐसे समय में लगी है कि जब पूरी तरह से वो अलर्ट पर है।
अधिग्रहणकारी जानी सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी को गोली मार कर शहीद कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जानी सैनिकों ने उक्त फिलिस्तीनी युवा को रविवार की सुबह समय फायरिंग का निशाना बनाया जब वो वेस्ट बैंक में गैर कानूनी रूप से बनाई गई नस्लभेदी दीवार को फांदने का प्रयास कर रहा था। इसराइली सैनिकों की फायरिंग की वजह से शहीद होने वाले फिलिस्तीनी का नाम अहमद सलीम गानिम बताया गया है। इससे पहले शुक्रवार को अतिग्रहणकारी इसराइली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के शहर जनीन में फायरिंग करके 3 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया था। पिछले कई महीनों के दौरान फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इसराइली सैनिकों के हमलों में तेजी आ गई है, जिसके कारण दर्जनों फिलिस्तीनी शहीद और घायल हो चुके हैं।
तुर्क समर्थित आतंकवादी गुट जबहत-उश-शामिया और अहरार-उश-शाम में होने वाली रक्तरंजी झड़पों में अब तक 22 आतंकी मारे गए और घायल हो चुके हैं। नूर प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के हलब प्रांत के क्षेत्र अलबाब में तुर्क समर्थित आतंकी गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच झड़पों में तेजी आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन झड़पों में अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 4 बच्चों सहित 15 लोग घायल हो चुके हैं। बताया जाता है कि शामिया फ्रंट और अहरार-उश-शाम गुट के आतंकी एक दूसरे के विरुद्ध आधुनिक और भारी हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और आतंकी गुट शामिया फ्रंट ने अपने आतंकियों के लिए भारी हथियारों की नई खेप रवाना की है।
अमरीकी आतंकवादी सेना उत्तर पूर्वी सीरियाई प्रांत अलहस्का में अपने अवैध ठिकानों का विस्तार कर रही है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार आतंकी गुट दाइश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करने वाले अमरीकी आतंकवादी सैनिकों ने सीरिया के पूर्वी क्षेत्रों में अपनी सैन्य और सुरक्षा उपस्थिति को मजबूत किया है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी ने अलहस्का के पूर्वोत्तर सीरियाई प्रांत में स्थानीय सूत्रों के हवाले से कहा है कि अतिग्रहणकारी अमरीकी सैनिकों ने जस्सम अलसाद अलशोमाली क्षेत्र में एक अवैध आधार पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि अमरीकी आतंकवादियों ने बेस को आधुनिक रडार सिस्टम से लेस किया है और इसके आसपास कई बड़े गोदाम बना रखे हैं।
इराकी खुफिया एजेंसी ने आतंकी गुट दाइश के एक सरगना की गिरफ्तारी का ऐलान किया है। इराकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि उसने आतंकी गुट दाइश को परिवहन और रसद सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वी प्रांत दियाला में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार इराकी खुफिया एजेंसी ने शनिवार को पूर्वी इराकी प्रांत दियाला में तकफीरी गुट दाइश के परिवहन और रसद समर्थन के प्रमुख की गिरफ्तारी का ऐलान किया।
इसराइल में हिंसक घटना में वृद्धि होने की वजह से इसराइली अधिकारियों और जनता में चिंता की लहर दौड़ गई है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के अवैध अधिकृत इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान 7 इसराइली मारे गए। क्षमा कीजिएगा, मारे गए लोगों की वजह घरेलू हिंसा, मतभेद और बदले की कार्रवाइयां बताई गई हैं। अवैध अधिकृत क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं, हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिस पर इसराइली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी योराम सोफर ने बड़े पैमाने पर जांच के आदेश भी दिए हैं।
भारत नियंत्रित जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अज्ञात लोगों ने शनिवार को एक और पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर का शव उनके घर के पास धान के खेत से मिला। अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर जिले के पंपोर इलाके के संबूरा निवासी फारूक अहमद मीर की शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
आतंकवादी गुट दाइश ने काबुल में गुरुद्वारे पर हमले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को एक गुरुद्वारे में कई विस्फोट हुए, जिनमें एक सिख सहित दो लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। अफगान सुरक्षा कर्मियों ने विस्फोटक लदे एक वाहन को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोककर एक बड़ी घटना को टाल दिया था।
यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के अनाजों के निर्यात का रास्ता रोककर अपनी निर्यात पर रोक लगाकर दुनिया को सूखेपन के खतरे में ग्रस्त करने की कोशिश कर रहा है। यूनेक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर एक आर्टिकल में ये बात कही। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में इमाम खुमैनी के व्यक्तित्व और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के दो अहम कामों पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि इमाम खुमैनी एक महान धर्मशास्त्री और धार्मिक नेता थे। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह एक महान धर्मशास्त्री थे, साथ ही एक महान नेता व धर्मगुरु व दर्शन शास्त्री भी थे। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह परिज्ञान के क्षेत्र में भी अपना नज़रिया रखते थे और तकनीक व विज्ञान के क्षेत्र में भी कम नहीं थे, लेकिन इमाम खुमैनी का व्यक्तित्व इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं रहा, बल्कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्य व्यक्तित्व वजाहदु फिल्लाह हक जिहादे इस आयत के अर्थ को व्यवहारिक करने वाला था। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ज्ञान का इतना बड़ा अंबार रखते हुए अल्लाह के मार्ग में संघर्ष के मैदान में कूद पड़े और इस संघर्ष को अपनी उम्र के अंतिम क्षणों तक जारी रखा और एक महाक्रांति पैदा कर दी। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह न केवल अपने देश में बल्कि पूरे क्षेत्र में और पूरे इस्लामी जगत में और पूरी दुनिया में एक विश्वसनीय क्रांति की पैदावार और एक अद्वितीय पैदावार थे।
اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں دو کام بہت ہی ابھوتپورو کیے، جن میں سے ایک اتیاچار پورن وراثتی راجشاہی ویوستھا کو کھاڑ پھینکنا اور دوسرا اسلام کے آدھار پر ایک ویوستھا اور سرکار کا گٹھن کرنا ہے۔ سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں امام خمینی کی اور سے دو بڑے اور ابھوتپورو کار انجام دیے گئے، ایک اتیاچار پورن وراثتی راجشاہی ویوستھا و اتارکک ویوستھا کو اکھاڑ پھینکنا تھا جو کئی ورشوں سے ہمارے دیش پر راج کر رہی تھی۔ یہ غلط دھارنا کہ دیش کی سرکار ان انسانوں کے ہاتھوں میں ہو اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں وراثت کے طور پر جائے، جنہوں نے تلوار یا طاقت کے بل پر سطح حاصل کی ہو اور اس کے بعد ایک پیڑھی سے دوسری پیڑھی تک سطح ہستانترت ہوتی جائے، یہ ہمارے دیش میں کئی ہزار سالوں سے ایک غلط اور اتارکک دھارنا تھی۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ امام خمینی کا پہلا کام یہ تھا کہ انہوں نے اس غلط دھارنا کو ختم کیا اور جنتا کے ہاتھوں میں کام سونپ دیا۔ امام خمینی کا دوسرا بڑا کام جو انہوں نے انجام دیا، اسلام کے آدھار پر ایک ویوستھا اور سرکار کا گٹھن کرنا تھا، جو کہ ہمارے دیش کے اتہاس میں بلکہ اسلام دھرم کے ادے کے بعد کے اتہاس میں ابھوتپورو تھا۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ یہ مہان امام خمینی کے مہا سنگھرش کا ایک مولیوان پریڑام تھا، اسی لیے یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ جاہدو فی اللہ حق جہاد، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وجاہدو فی اللہ حق جہاد، جیسا کہ دھرم کے مہاپروشوں کے بارے میں کہا گیا ہے یہ مہان ہستی وجاہدو فی اللہ حق جہاد آیت کا پورن چریتارتھ ہے۔ دوستوں، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। विकीलीक्स के संस्थापक अमरीका के हवाले, यूक्रेन को लेकर पुतिन का नया बयान और कश्मीर में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जारी। दोस्तों, ये हैं हमारी आज की चर्चा के विषय। روسی راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ یورپی سنگھ میں یوکرین کی سدسیہ کا وہ ورودھ نہیں کرتے ہیں۔ وستار سے بتا رہے ہیں سید میسم۔
یورپی یونین دوارا یوکرین کی سدسیہ کو لے کر ہری جھنڈی دکھانے کے بعد روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ انہیں یوکرین کی سدسیہ سے کوئی سمسیہ نہیں ہے۔ پوتین سے یورپی یونین میں یوکرین کی سدسیہ کو لے کر سوال ہوا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اس یورپی یونین کے ورودھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ کوئی سینیہ سنگھ نہیں ہے۔ ہر دیش اس بات کا ادھیکار رکھتا ہے کہ وہ کس سنگھ کی سدسیہ چاہتا ہے۔ शुक्रवार को यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसे सदस्यता का नामांकन नाम दिया गया है। यूरोपीय कमीशन के प्रमुख ने कहा है कि इस कमीशन ने यूरोपीय परिषद से सिफारिश की है कि यूक्रेन को इस यूनियन की सदस्यता के लिए नामांकित कर दिया जाए। हालांकि इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि यूक्रेन को देश में अधिक सुधार करने होंगे। इस तरह से यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता के लिए भूमि प्रशस्त हो गई है। अगर अगले हफ्ते आयोजित होने वाली यूरोपीय कमीशन की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगती है तो इसका यूक्रेन युद्ध पर भी असर पड़ेगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली और रोमानिया के नेताओं की हालिया कीव की यात्रा और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बैठक और यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर उनके अनुकूल विचारों की घोषणा ने यूरोपीय कमीशन के निर्णय को प्रभावित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूरोपीय कमीशन का ये निर्णय यूरोपीय संघ में सदस्यता की दिशा में पहला कदम है जो हमें जीत के करीब लाता है। मुझे अगले सप्ताह यूरोप की परिषद से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। हालांकि यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए वर्षों लग सकते हैं क्योंकि इस देश को यूरोपीय संघ के भ्रष्टाचार विरोधी मानकों का पालन करने के लिए सुधारों की आवश्यकता होगी। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता का विरोध नहीं करने का रूस का फैसला हो सकता है कि हालिया क्षेत्रीय घटनाओं को लेकर हो और इसी के साथ साथ इस तथ्य के मद्देनजर हो कि यूरोपीय संघ में शामिल होने की एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें अभी काफी लंबा समय लगेगा। वहीं इस मुद्दे पर मॉस्को ने अपना रुख कई बार बदला है। बहरहाल रूसी राष्ट्रपति के नए रुख से पता चलता है कि मॉस्को एक बार फिर यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता का विरोध नहीं करने के अपने रुख पर एक बार फिर लौट आया है। मॉस्को का सैद्धांतिक रुख अब तक नाटो जैसे सैन्य गठबंधन में यूक्रेन की सदस्यता का विरोध करना रहा है, जबकि यूरोपीय संघ मॉस्को के विचारों में अनिवार्य रूप से एक आर्थिक संघ है जो रूस के लिए कोई खतरा नहीं है। साथ ही रूस के रुख में इस बदलाव को यूरोपीय यूनियन के प्रति नरमी और यूक्रेन के प्रति सकारात्मक नीति के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा वो प्रमुख यूरोपीय देशों, विशेष रूप से जर्मनी और फ्रांस को मॉस्को के भयंकर दुश्मनों की लिस्ट से बाहर निकालना चाहता है।
और अब एक अन्य विषय। जूलियन असांजे जैसे ही अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाते हैं वैसे ही उनको 175 वर्षों की सजा दे दी जाएगी। नजफजादे की रिपोर्ट को स्वर दे रहे हैं रविश जैदी।
विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे इस समय 50 साल के हैं। ब्रिटेन की जेल में उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टर भी जेल में उनकी स्थिति को लेकर चिंता में हैं। कई वर्षों पहले उन्होंने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली थी। 3 साल पहले तक उनका स्वास्थ्य ठीक था, इतना कि अपनी महिला वकील के साथ शादी भी कर ली थी। 38 वर्षीय स्टेला मोरिस से उनके 2 बेटे भी हैं। लेकिन अब उन्हें अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अमेरिका के हवाले किए जाने की मंजूरी दे दी है, वो भी ऐसी स्थिति में कि उनके अमेरिका में पांव पड़ते ही उन्हें 175 साल की सजा हो जाएगी। असांजे के समर्थकों का कहना है कि वो एक खोजी पत्रकार हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। असांजे ग्वांतानामो जेल की वास्तविक स्थिति अफगानिस्तान और इराक में आतंकी अमरीकी सैनिकों के हाथों हजारों आम नागरिकों के मारे जाने से संबंधित दस्तावेजों को विकिलीक्स के माध्यम से दुनिया के सामने लाए थे। उनके द्वारा किए गए रहस्य उद्घाटन दुनिया भर के संचार माध्यमों के लिए मुख्य स्रोत भी बने।
Showing a deadly US attack on a group of people in Iraq.
WikiLeaks.
Online whistleblower WikiLeaks.
Two children were aboard the bus. Both were seriously injured.
अमेरिका के प्रसिद्ध प्रोफेसर चार्टन मैक्रेन
Facts of data of information.
मैक्रेन कहते हैं कि कुछ पत्रकारों का काम फोटो खींचना है, कुछ का काम खबरों को इकट्ठा करना है, लेकिन कुछ का काम खोज करके वास्तविकता को दुनिया के सामने लाना है। व्हाइट हाउस और बाइडेन जैसे असांजे के विरोधी
हाई टेक टेररिस्ट
उनकी प्रतिभा पर बल देते हुए कहते हैं कि उन्होंने खुफिया दस्तावेजों को प्रकाशित किया है और दूसरों के जीवन को खतरे में डाला है।
You have a problem.
وہیں ڈیموکریٹس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ان سے شکایت ہے تو وہ ہے ہلری کلنٹن. ان کا کہنا ہے کہ اسانجے ٹرمپ اور روس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میلبورن وشودیالے کے نیورولوجسٹ اسانجے کافی سمے سے لوگوں کے دماغ پر چھائے ہوئے ہیں, اسی سمے سے جب انہوں نے آئیوری کوسٹ کے تٹیے علاقوں میں زہریلے کوڑے اور اس سے مرنے والے ایک ویکتی کے بارے میں رپورٹ پرکاشت کی تھی. ان کے سمرتھک ان کو پترکارتا کا ایک ایسا ستارہ مانتے ہیں جو بنا ڈرے اپنی بات کہتا ہے, وہیں ان کے ورودھی ان کو دنیا کا سب سے خطرناک انسان بتاتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے وہ ایک ایسے ویکتی ہیں جو چھپے ہوئے رازوں کو دنیا کے سامنے لا رہے تھے. نیو یارک سے IRIB کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
اور شروتاؤں, اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا. کشمیری نیتا سجاد لون کا کہنا ہے کہ کشمیر کے بارے میں کیندر سرکار کی نیتیوں پر انہیں وشواس نہیں ہے. سری نگر سے سپتے محمد حسن کی رپورٹ.
جموں کشمیر پیپلز کانفرنس, جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے نئی دہلی کی ادھیکشتا پراپت ہے, نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو نیتیاں نئی دہلی نے اپنائی ہے اس کے برے پرینام نکل رہے ہیں, اور ہم نئی دہلی سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نیتیوں میں تبدیلی لائیں. سری نگر میں ایک سماروہ کو سمبوجت کرتے ہوئے سجاد گھنی لون نے کہا کہ جو گھٹنائیں دیش بھر میں گھٹی ہیں اس سے یہ بات سدھ ہوئی ہے کہ ہماری نیتیاں ٹھیک نہیں ہیں, انہیں بدلنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اگرچہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, پرنتو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شانتی کیسے استھاپت کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک پولیٹیکل پرابلم ہے, اسے راجنیتک دورہ ہی سلجھانا ہوگا. ادھر جموں کشمیر بھاجپا نے کہا ہے کہ حج کے حوالے سے نئی دہلی نے جو نیتیاں اپنائی ہے وہ بہت ہی صحیح ہے, کیونکہ اس سے پہلے سبسڈی دی جاتی تھی اور حج صحیح نہیں ہوتا تھا, اور آج کے پرشاسن نے مسلمانوں کے تئیں وہ جذبہ اختیار کیا ہے جو دھارمک بھاوناؤں کے انوسار ہے.
سارے دنیا میں ایک دشپرچار چل رہا ہے بی جے پی مسلمان کے خلاف ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ پاکستانی کا دشپرچار ہے. بی جے پی کا آدرش کیا ہے؟ اور سلوگن سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا پریاس ہے.
اس بیچ جموں کشمیر ایل جی پرشاسن نے ایک بار پھر لوگوں سے کہا ہے کہ اگر وہ جموں کشمیر میں شانتی چاہتے ہیں تو وہ پرشاسن کا سہیوگ کریں. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کو ترقی کے ہر استر پر لے جایا جائے گا, یہ بھارتیہ پردھان منتری کا وعدہ ہے, پرنتو ہم لوگوں سے بھی آہوان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے اور ہمارا سہیوگ کرے. اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم جاری ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ دکشنی کشمیر میں الگاوادی چھاپہ ماروں اور سرکشا بلوں کے بیچ ایک مڈ بیڑ میں ایک الگاوادی چھاپہ مار ہتات ہوا ہے, جس کے نیانترن سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے.
دوستو, آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا, اور اب پرستوت ہے کاریکرم قرآن ایشوری چمتکار. قرآن ایشوری چمتکار.
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरी चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की आयत क्रमांक 72 और 73 की तिलावत सुनें।
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
جادوگروں نے فرعون سے کہا، جو اسپشٹ نشانیاں اور چمتکار ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کدابھی اس پر تجھے پراتھمکتا نہیں دے سکتے، تو جو کچھ تجھے فیصلہ کرنا ہے کر لے، کہ تو تو بس اس سانسارک جیون کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ نشچت روپ سے ہم اپنے پالنہار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں بادھ کیا کھما کر دے، اور ایشور ہی سب سے اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
اس سے پہلے ہم نے کہا کہ فرعون کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمتکار دیکھ کر وشواس ہو گیا کہ وہ جادو ٹونا نہیں بلکہ ایک اسادھارن شکتی ہے جس نے لاٹھی کو ایک بہت بڑے اجگر میں پریورتت کر دیا ہے۔ یہی کارن تھا کہ وہ سب کے سب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اتینت بھیانک دنڈ و یاتنا کی دھمکی دی۔
یہ آیتیں کہتی ہیں کہ ایمان لانے والے جادوگر فرعون کی دھمکی سے نہ کیول یہ کہ پربھاوت نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ادھک ٹھوس سور میں اتر دیا کہ ہم تجھے اپنے پالنہار پر پراتھمکتا نہیں دے سکتے اور اس سپشٹ چمتکار کا انکار نہیں کر سکتے، تجھے ہمارے ورد جو کام کرنا ہے اور جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، یہ سب اس نشور اور کچھ دن کے سانسارک جیون تک ہے، کنتو پرلے میں ہم ہی سفل ہوں گے، کیونکہ ہمیں آشا ہے کہ ایشور ہمارے اتیت اور حضرت موسیٰ کو لوگوں کے بیچ اپمانت کرنے کے شڑیندر کے ہمارے پاپ کو کھما کر دے گا۔ واستوکتا یہ ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور تو نے ہی ہمیں اس کے لیے ووش کیا تھا۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ منوشیہ کا واستوک مولیہ اس کے وچاروں اور آستھا سے ہوتا ہے، تتھا دھمکی یا لوب دے کر لوگوں کی آستھاؤں کو پریورتت نہیں کیا جا سکتا۔
واستوک ایمان کی نشانی دھارمک و ایشوری مانیتاؤں کی رکشا کے مارگ میں اپنی جان نیوچھاور کرنے کے لیے سوئم کو تیار کرنا ہے۔
ایشور تتھا اس کی اسیم شکتی کے مقابلے میں سنسار کی بڑی شکتیوں کی شکتی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ایشور سے جڑ جاتا ہے اسے کسی سے کوئی بھے نہیں ہوتا۔
ربی فالق النوار علیہ اعتمادی وذنب عنی محا فی یوم المعالی ربی فالق النوار علیہ اعتمادی وذنب عنی محا فی یوم المعالی ربی فالق النوار يوم المعالي.
آئیے اب سورۃ طٰہٰ کی آیت کرمانک 74, 75 اور 76 کی تلاوت سنیں.
انه من یأتی ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.
निश्चित रूप से जो कोई अपने पालनहार के पास अपराधी बनकर आए तो उसके लिए नरक है जिसमें न तो वो मरेगा और न जीवित रहेगा, और जो कोई उसके पास मोमिन होकर आए और उसने भले कर्म किए हों तो ऐसे ही लोगों के लिए तो ऊंचे दर्जे हैं, उनके लिए स्वर्ग के अमर बाग हैं जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे। ये पारितोषिक है उसका जिसने स्वयं को पापों से पवित्र रखा।
ये आयतें फिरौन द्वारा दी जाने वाली धमकियों और प्रलोभन के मुकाबले में हैं। फिरौन ने आरंभ में जादूगरों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि यदि तुम लोग मूसा को अपमानित कर दोगे तो मेरे निकटवर्ती हो जाओगे। ये आयतें कहती हैं कि जो कोई ईमान लाए और भले कर्म करे तो उसे ईश्वर के निकट सबसे ऊंचे दर्जे प्राप्त होंगे और वो स्वर्ग की अनंत अनुकंपाओं से लाभान्वित होगा।
फिरौन ने जादूगरों को धमकी देते हुए कहा कि मैं विपरीत दिशाओं से तुम्हारा एक हाथ और एक पैर काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा ताकि तुम सबसे बुरी दशा में इस संसार से जाओ। ये आयतें कहती हैं कि नरक का दंड इतना कड़ा है कि जो कोई भी उसमें चला जाएगा उसे सांसारिक जीवन के बारे में कुछ याद ही नहीं रहेगा। नरक में वो न तो मरेगा कि दंड से मुक्ति मिल जाए और न ही कोई सुख मिलेगा कि वो जीवन का आभास करे।
अलबत्ता इस बात में कुरान मजीद के व्याख्याकारों के बीच मतभेद है कि ये तीनों आयतें जादूगरों की बातों का क्रम है या ईश्वर ने इन आयतों को अलग से भेजा है ताकि उनकी बातें संपूर्ण हो जाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी संभावना अधिक प्रबल है, क्योंकि ये बात अधिक स्वाभाविक नहीं लगती कि जादूगर जो अभी अभी ईमान लाए हैं प्रलय में अपराधियों और ईमान लाने वालों के अंजाम से अवगत हो जाएं तथा स्वर्ग व नरक की विशेषताओं का इतने विस्तार से उल्लेख करें।
प्रत्येक दिशा में इस घटना में जो बात महत्वपूर्ण है वो आंतरिक परिवर्तन है जिसने जादूगरों के ईमान लाने का मार्ग प्रशस्त किया। ये विचार व व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन लाने हेतु मनुष्य की क्षमता व योग्यता का सूचक है। फिरौन के जादूगरों के ईमान लाने की घटना उन लोगों के दृष्टिकोण के विपरीत है जिनका कहना है कि मनुष्य अपने जीवन और समाज के वातावरण के अंतर्गत होता है और उसी प्रकार जीवन बिताने के लिए विवश होता है जिस प्रकार उसके परिवार व समाज ने उसका प्रशिक्षण किया है।
इन आयतों से हमने सीखा कि मनुष्य का अपना संकल्प और इच्छा शक्ति होती है और वो जिस क्षण भी चाहे ईमान से कुफर की ओर या कुफर से ईमान की ओर जा सकता है।
मनुष्य का अंत महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से काफिर हैं किंतु अपनी आयु के अंत में ईमान के साथ इस संसार से जाते हैं, और कितने ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय तक ईश्वर की उपासना करते रहते हैं किंतु कुफर व अनेकेश्वरवाद के साथ इस संसार से जाते हैं।
ईश्वर का भय और आत्मनिर्माण लोक परलोक में कल्याण व मोक्ष का मार्ग है। हृदय, आंखों और जबान की पवित्रता मनुष्य को हर प्रकार की पद भ्रष्टता से सुरक्षित रखती है और ईश्वरीय स्वर्ग तक पहुंचाती है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल को लेकर उपस्थित हैं स्वाति और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
आज के कार्यक्रम में हम ईरान के पेट्रोकेमिकल उद्योग तथा इस्पात उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे।
इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता ने शमसी वर्ष 1401 के लिए जिस नारे का चयन किया है वह है रोजगार पैदा करने वाला नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन। वरिष्ठ नेता के इसी नारे के अंतर्गत हमने ईरान के भीतर पेट्रोकेमिकल और इस्पात उद्योग से संबंधित ये कार्यक्रम तैयार किया। ईरान में पेट्रोकेमिकल उद्योग का इतिहास 1951 से शुरू होता है। 1940 के दशक के अंत में तत्कालीन आर्थिक मंत्रालय ने देश में पेट्रोकेमिकल उद्योग में विकास के उद्देश्य से रासायनिक केंद्र का गठन किया। इस केंद्र ने सन 1948 में फर्टिलाइजर या उर्वरक कक्ष की स्थापना की। इस कंपनी ने सन 1958 में मर्वदश्त केमिकल फैक्ट्री की आधारशिला रखी।
सन 1963 में शिराज पेट्रोकेमिकल के अंतर्गत पहले फर्टिलाइजर कारखाने ने अपना काम आरंभ किया। कुछ ही वर्षों के अंतराल से ईरान में बहुत से फर्टिलाइजर कारखानों ने अपनी गतिविधियां आरंभ कर दी, जैसे राजी, आबादान, पासादगात, करेन, अहवाज, खार्क, फाराबी तथा शिराज का पेट्रोकेमिकल कारखाना। ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश में इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले पेट्रोकेमिकल का उत्पाद 1.6 मिलियन टन प्रति वर्ष था।
इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद से देश के पेट्रोकेमिकल उद्योग की ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाने लगा। ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान देश में पेट्रोकेमिकल उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर मंदी का सामना करना पड़ा। इस दौरान शिराज पेट्रोकेमिकल विकास योजना समाप्त हुई, किंतु बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल परियोजना रुक गई। थोपे गए युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद युद्ध के दौरान जिन पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा था उनकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया।
यह कार्य प्रथम पंचवर्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत जारी रहा। इसी दौरान बहुत सी अधूरी पड़ी परियोजनाओं के काम को भी पूरा किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की योजनाओं को बढ़ाने तथा विकसित करने का काम तेज कर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम काल में उत्पादन का काम तेज हो गया और सन 1999 में उत्पादन बढ़कर 12 मिलियन टन हो गया। 2000 और 2010 के दशकों में पेट्रोकेमिकल उद्योग में पूंजी निवेश का काम जारी रहा। इसका परिणाम यह निकला कि वर्तमान समय में ईरान के भीतर पेट्रोकेमिकल के कम से कम 68 सेंटर पाए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योग में परिवर्तन से जहां एक ओर आर्थिक आय में वृद्धि का कारण बना, वहीं पर दूसरी ओर इसके माध्यम से रोजगार का भी सृजन किया गया। इस प्रकार से इससे आर्थिक विकास को व्यावहारिक रूप में बल मिला।
पिछले कुछ दशकों के दौरान पेट्रोकेमिकल उद्योग ऐसा उद्योग रहा है जिस पर विश्व के बहुत से देशों की विशेष नज़र के कारण इसका अधिक विकास हुआ। वर्तमान समय में खाद्य उद्योग और वाहन निर्माण उद्योगों के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोकेमिकल उद्योग को सबसे बड़ा उद्योग माना जा रहा है। गैर पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात सदा से ही ईरान के आर्थिक नीति निर्धारकों के ध्यान का केंद्र रहा है, क्योंकि इसके विस्तार से देश की दुनिया की मंडियों में उपस्थिति बढ़ेगी और उससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। हालिया कुछ वर्षों के दौरान ईरान की अर्थव्यवस्था पर पेट्रोकेमिकल उत्पादों का विशेष प्रभाव रहा और इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित की गई।
वाहन उद्योग के विपरीत, जिसमें अधिकतर ध्यान देश की मंडियों पर रहता है, ईरान में पेट्रोकेमिकल उद्योग की निर्यात में 21% की भागीदारी है। ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले ईरान में पेट्रोकेमिकल उत्पाद की मात्रा 1.6 मिलियन टन थी, जो वर्तमान समय में बढ़कर 90 मिलियन टन से अधिक हो चुकी है। सन 1963 से लेकर 2019 तक पेट्रोकेमिकल के उत्पादन की क्षमता 65 मिलियन टन हो चुकी है। यह क्षमता 2020 में 90 मिलियन टन हो चुकी है। ईरान के पेट्रोलियम मंत्री ने पिछले वर्ष कहा था कि वर्तमान समय में देश के 68 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट सक्रिय हैं जो सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से सन 2022 के अंत तक ईरान में पेट्रोकेमिकल उद्योग का उत्पादन 104 मिलियन टन तक होने की उम्मीद है।
ईरान के लिए पेट्रोकेमिकल उद्योग में विकास का एक कारण प्रतिबंधों के प्रभावों का कम होना है। जब से अमेरिका की सरकार ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध विशेषकर उसके तेल के क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव की नीति को अपनाया है, तब से तेहरान में पेट्रोकेमिकल उद्योग की ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया गया। इसका एक कारण ये भी है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग तेल से चलता है और ईरान विश्व में तेल पैदा करने वाले बड़े देशों में से है। प्रतिबंधों के चलते वो अपना तेल तो निर्यात नहीं कर सकता, किंतु इसी तेल को पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रयोग करके अमरीकी प्रतिबंधों की धार को कम किया जा सकता है।
एक अन्य ध्यान योग्य बिंदु ये भी है कि ईरान के लिए पेट्रोकेमिकल उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक माध्यम है। विश्व बाजार में ईरान के पेट्रोकेमिकल उद्योग की भागीदारी 1% से भी कम है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस बाजार में ईरान की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ काम किए गए हैं। ईरान के राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल उद्योग के एमडी बेहजाद मोहम्मदी ने बताया है कि सन 2020 में ईरान के पेट्रोकेमिकल उत्पादों से 15 अरब डॉलर कमाए हैं। इस उद्योग की एक अन्य विशेषता यह भी है कि यह छोटे और कुटीर उद्योगों तथा कारखानों के लिए आवश्यकता की आरंभिक वस्तुओं की आपूर्ति करता है। इसी के साथ यह रोजगार पैदा करने का भी काम करता है।
इस प्रकार के कामों से जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, वहीं पर दूसरों पर निर्भरता समाप्त करने में ये प्रभावी है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ईरान का पेट्रोकेमिकल उद्योग नॉलेज बेस्ड तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 13वीं सरकार के कार्यकाल के अंत तक ईरान इस क्षेत्र में स्वावलंबित हो जाएगा। वर्तमान समय में पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में ईरान मध्य पूर्व में दूसरे नंबर पर आता है। इन बातों को देखते हुए ये बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है कि ईरान की अर्थव्यवस्था में देश के पेट्रोकेमिकल उद्योग में लगातार प्रगति होगी।
दोस्तों, उद्योगों में इस्पात को विशेष स्थान हासिल है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से इसे हटाया नहीं जा सकता। फौलाद से बनी चीजों का प्रयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ईरान में फौलाद का पहला कारखाना सन 1927 में लगाया गया था। बाद में सन 1963 में देश के खुजिस्तान प्रांत में इस्पात का कारखाना बनाया गया। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय इस्पात संगठन की रिपोर्ट बताती है कि ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले इस्पात की पैदावार लगभग 1.8 मिलियन टन प्रति वर्ष थी। बाद में सन 2020 में यह उत्पादन बढ़कर 29 मिलियन टन हो गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ईरान में फौलाद की पैदावार पिछले 40 वर्षों में बढ़कर 16 बराबर हो चुकी है।
ईरान के भीतर फौलाद की पैदावार पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपनी ज़रूरत से बहुत कम थी। यही वजह थी कि अपनी ज़रूरत का फौलाद दूसरे देशों से मंगवाया करता था, किंतु इस ओर जब से विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, उसके बाद से ईरान में फौलाद की पैदावार बहुत तेज़ी से बढ़ी। इस समय ईरान विश्व में फौलाद या इस्पात पैदा करने वाले देशों की सूची में पहुंच चुका है। सन 2010 में इस्पात का उत्पादन करने में ईरान 17वें नंबर पर था। हालांकि वर्तमान समय में इस्लामी गणतंत्र ईरान दुनिया में इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में 10वें नंबर पर आ गया है। पश्चिम एशिया में ईरान इस्पात की पैदावार करने वाले देशों में सबसे ऊपर अर्थात पहले नंबर पर पहुंच चुका है।
ईरान में फौलादे मुबारके इस्फहान, जूब आहने इस्फहान और फौलादे खुजिस्तान कंपनियां सबसे अधिक इस्पात पैदा कर रही है। देश ने सन 2025 तक इस्पात की पैदावार का 55 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश के भीतर इस्पात की मांग लगभग 20 से 24 मिलियन टन तक बताई जाती है। 17वें स्थान से विश्व में इस्पात पैदा करने वाले देशों की सूची में ईरान 10वें नंबर पर ऐसी स्थिति में आया है कि जब ईरान का इस्पात उद्योग अमेरिकी प्रतिबंधों से सुरक्षित नहीं रह पाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ताकाल में यह उद्योग ट्रंप की विध्वंसकारी नीतियों की जद में आया। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2020 को ईरान के इस्पात पैदा करने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण कारखानों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
हालांकि ईरान में सबसे अधिक इस्पात पैदा करने वाले कारखाने फौलाद मुबारक इस्फहान को तो पहले से ही अमेरिका के अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष बात यह है कि हालिया वर्षों के दौरान हर प्रकार के प्रतिबंधों और सीमितताओं के बावजूद ईरान में इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों ने देश के विशेषज्ञों की सहायता से इस उद्योग में प्रयोग होने वाले बहुत से उपकरणों का स्वदेशीकरण कर लिया। वे लोग अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अमरीका के अत्याचारपूर्ण प्रतिबंध किसी सीमा तक बाधाएं डाल सकते हैं, किंतु देश के स्वाभिमानी विशेषज्ञ और क्रांतिकारी अपने अथक प्रयासों से इन प्रतिबंधों को प्रभावहीन बना देंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ईरान के दौरे पर, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। ईरान और यूएई ने संबंधों के विस्तार पर बल दिया। इसराइली सैनिकों की फायरिंग में एक फिलिस्तीनी शहीद हो गया और कश्मीर में टारगेट किलिंग में तेजी आई है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें। खुदा हाफिज। Thank you.